नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में संतुलन बहाल करना सिर्फ वैश्विक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक वैश्विक तात्कालिक जरूरत भी है। नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग ने विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और समरसता का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों और 175 देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री लगभग 3,200 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इनसे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती करते समय लोक सेवा आयोगों को ईमानदारी और निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 दिसंबर को शुरू हुआ 19 दिन का शीतकालीन सत्र कल संपन्न हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा कि सदन में लगभग 111% कामकाज हुआ। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन करीब 92 घंटे चला और 121% कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक महत्व के मुद्दों पर उत्तम बहस और चर्चाओं के लिए जाना जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस ने लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र में कुल 8 विधेयक पारित किए गए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करें। नई दिल्ली में वायु प्रदूषण पर 4थी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ नगर निकायों की खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए प्रस्तुत कार्ययोजनाओं की भी समीक्षा की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल पिछले 11 वर्षों में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में काफी प्रगति हुई है। नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, भारतमाला, सागरमाला और पर्वतमाला सहित कई प्रमुख पहलों ने शहरी विकास को काफी मजबूत किया है और भारत को दुनिया के अग्रणी मूलभूत ढांचा सुविधा वाले देशों में से एक बनाने के लिए स्पष्ट खाका तैयार किया है। सरकार ने भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत की है, जो एक सहकारिता आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य सवारी क्षेत्र में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और चालक के मालिकाना हक वाला विकल्प मुहैया कराना है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के विजन से प्रेरित यह पहल ड्राइवरों को मालिकाना हक, गवर्नेंस और मुनाफे की हिस्सेदारी के केंद्र में रखती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सतना में 6 बच्चों के HIV से संक्रमित होने की घटना पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये बीमारी राज्य के एक जिला अस्पताल में रक्त आधान के बाद फैली। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 4 हफ्तों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद कल ढाका और बांग्लादेश के कई अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। हादी की मौत बृहस्पति रात सिंगापुर में उपचार के दौरान हुई थी। जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी और मेमनसिंह में हाईवे जाम किए गए, जबकि सेंट्रल ढाका में घंटों तक यातायात ठप रहा। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया है। भारत के दिए 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।